दोपहर के बाद सानवी का मन बहुत भारी था। आर्यन के चले जाने से उसे अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था। मन बटाने के लिए उसने सोचा कि वो इंद्र से मिलाए। इंद्र उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उससे मिलकर हमेशा सानवी को हल्कापन महसूस होता था, जैसे किसी ने कंधे पर रखा बोझ थोड़ी देर के लिए हटा दिया हो। जब वो इंद्र के पेंटहाउस पहुंची, दरवाज़ा खुलते ही इंद्र का चेहरा खिल गया। अरे, तुम इन दिनों कहाँ गायब थी? इंद्र ने उत्साह से कहा। तुम्हें देखकर तो मेरा दिन ही बन गया। सच में बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आई। सानवी हल्का सा मुस्कुराई। मेरा भी मन हो रहा था तुमसे मिलने का, उसने स्वीकार किया। इसलिए सोचा क्यों ना आ ही जाऊं। इंद्र ने उसे अंदर आने दिया और तुरंत किचन की तरफ गया। कुछ देर बाद वो दो ग्लास जूस लेकर आया, एक सानवी के सामने रखा और एक खुद पीने लगा। बैठते हुए उसने गौर से उसकी आंखों को देखा, फिर बोला, तुम्हारी आंखें आज कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। कुछ अच्छा हुआ है क्या? सानवी ने उसकी तरफ शरारती अंदाज में देखा। हाँ हुआ है, लेकिन तुम पहले गेस करो, उसने टीजिंग टोन में कहा। इंद्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब मैं कैसे गेस करूं, तुम ही बताओ ना। सानवी ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। क्या, सच में? इंद्र लगभग हैरान होकर खड़ा ही हो गया। तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट? ये तो बहुत बड़ी बात है सानवी। उसके चेहरे पर सचमुच खुशी थी, जैसे किसी अपने ने बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। सानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरा खुद का रेस्टोरेंट, मेरी एक फ्रेंच दोस्त है, उसके साथ मिलकर खोला है, हम दोनों ने मिलकर पूरा सेटअप किया। इंद्र अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट था आर्यन के साथ, तुम उसका काम छोड़ नहीं सकती थी, फिर ये कैसे हुआ? सानवी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। इंद्र हैरान होकर बोला, खत्म? कैसे? सानवी की आंखों में वही हल्की चमक थी, थोड़ी राहत, थोड़ा डर और थोड़ी आज़ादी। आर्यन ने खुद मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया, उन्होंने अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। सानवी के चेहरे पर हल्की राहत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है सानवी, तुम डिज़र्व करती हो ये सब। सानवी ने धीरे से कहा, रेस्टोरेंट शुरुआत में मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं तैयार हूँ उन मुश्किलों के लिए। इंद्र थोड़ा चुप रहा, फिर अचानक बोला, तो इसका मतलब अब तुम मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं करोगी? उसके चेहरे पर हल्की सी मासूमियत थी। वो क्लब की किचन की तरफ इशारा कर रहा था, जहां सानवी उससे मेन्यू, टेस्ट, प्रेजेंटेशन और नई रेसिपीज में मदद करती थी। सानवी हंस पड़ी, क्यों नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊंगी। अब मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इंद्र की आंखों में सुकून आ गया। सानवी ने आगे कहा, वैसे कल मैं नहीं आ पाऊंगी, कल मुझे बैंक जाना है कुछ पेपर्स के लिए, परसों आऊंगी, ठीक है? इंद्र ने सिर हिलाया, ठीक है, और हाँ मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग में सबसे आगे रहूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सानवी भी हल्के से हंसी। कुछ देर बाद दोनों जूस पीते हुए अपने अपने सपनों की बात करने लगे, और सानवी को पहली बार लगा कि शायद जिंदगी उसके लिए भी कुछ अच्छा लिख रही है। विक्रांत हाल के लगे शीशे में अपने चेहरे को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो केवल वही जानता था। उसके दिमाग में बहुत समय से एक प्लान चल रहा था, लंबा, गहरा और खतरनाक। जेसिका को इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस तरह का आदमी है। उसके सामने वो हमेशा हल्का फुल्का, हंसता हुआ और जिम्मेदार पति बनकर दिखाता था, लेकिन भीतर उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। इसी बीच जेसिका कमरे से तैयार होकर बाहर आई, खूब सारा मेकअप, ढीली कर्ल्स और एक खूबसूरत ड्रेस। क्लब की लाइट्स के मुताबिक वो थोड़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। विक्रांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सहज सा बनते हुए पूछा, अरे तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो, वो भी शाम के इस टाइम पर? जेसिका अपने जूतों की स्ट्रैप ठीक करते हुए बोली, तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग इंद्र के क्लब जा रहे हैं उससे मिलने, उसने इंद्र का नाम हल्के से सम्मान और अपनापन के साथ बोला। विक्रांत की आंखों में एक पल को चमक आई, एक ऐसी चमक जिसे जेसिका ने नोटिस नहीं किया। ओ, इंद्र से मिलने, अच्छा तुम जाओ, विक्रांत ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, आज मैं जय के साथ गेम खेल रहा हूँ। जेसिका ने भौं चढ़ाकर कहा, अभी इस टाइम तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? विक्रांत ने कंधे उचकाए, क्योंकि मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आज वो गेम खेलेंगे, और तुम जानती हो मैं एक बार कुछ कह दूं तो निभाता हूँ। जेसिका को उसकी बात पर शक नहीं हुआ, उसे लगा कि विक्रांत सिर्फ एक कैरियर है जो अपने छोटे जय को टाइम दे रहा है। ठीक है तुम रहो, मैं अकेले चली जाती हूँ। हाँ हाँ आराम से जाओ, विक्रांत ने मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ बहुत गहरा छिपा था। जेसिका के बाहर निकलते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसने धीरे से बुदबुदाया, एक एक करके सब अपने अपने रास्ते चल पड़े, अब असली खेल शुरू होगा। जेसिका क्लब पहुंच गई है। जेसिका गाड़ी से उतरकर क्लब के बाहर खड़ी हुई। सूरज डूब चुका था लेकिन रात अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। क्लब की बाहर वाली नियॉन लाइट्स हल्का सा चमक रही थी, जिससे पूरी जगह में खुशगवार लेकिन रहस्यमय सा माहौल बन रहा था। वो थोड़ा जल्दी आ गई थी। इस समय क्लब लगभग खाली सा होता है क्योंकि असली भीड़ तो देर रात ही उमड़ती है। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा और फेंट म्यूजिक सुनाई दिया। कुछ वेटर्स इधर उधर ग्लासेस सजाने में लगे थे। बार में सिर्फ दो लोग बैठे थे जो शायद नियमित ग्राहक थे, लेकिन इंद्र वहां नहीं था। जैसिका ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। स्टेज खाली, काउंटर खाली और ऑफिस का दरवाजा भी बंद। इतनी जल्दी तो इंद्र आता नहीं, उसने खुद से कहा। वो बार के पास जाकर बैठ गई। जैसिका घर से निकल चुकी थी। दरवाजा हल्के से बंद होने की आवाज आई और पूरा का पूरा हाउस एक पल को शांत हो गया। अब घर में सिर्फ दो लोग थे, विक्रांत और छोटा बच्चा जय। जय वही बच्चा था जिसकी कस्टडी अदालत ने जैसिका को दी थी। इसी बच्चे के नाम के शेयर की वजह से ही जैसिका कंपनी में मैनेजर बनी थी। जैसिका को नहीं पता था कि जिस एक्सीडेंट में जय की मम्मी पापा की जान गई वो कोई हादसा नहीं बल्कि विक्रांत की चाल थी। अब उस चाल का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था, जय के कमरे की तरफ विक्रांत का जाना। जैसिका के जाते ही विक्रांत के चेहरे पर एक धीमी ठंडी मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जिसे वो किसी के सामने नहीं दिखाता था। वो धीरे धीरे चलता हुआ जय के कमरे की ओर बढ़ा। कमरा आधा खुला था, अंदर टीवी का हल्का सा शोर चल रहा था। जय फर्श पर अपने खिलौने इधर उधर फैलाकर बैठा था, डायनासोर और कारों के साथ कुछ कहानी सा खेल रहा था। जैसे ही उसने विक्रांत को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। विक्रांत उसके पास बैठ गया और उसके बालों को हल्के से सहलाया, इतनी नरमी से जितनी नरमी उसके इरादों में कभी नहीं थी। हाँ चैंप, मैं आ गया, उसकी आवाज में मिठास थी पर आंखों में एक अलग ही अंधेरा। विक्रांत का असली खेल शुरू होता है। विक्रांत ने मेज पर रखी हुई कार्ड्स की एक छोटी सी गड्डी उठाई। जय उसे उत्सुकता से देख रहा था। आज हम एक नया गेम खेलेंगे, विक्रांत ने रहस्यमयी आवाज में कहा। जय उत्साहित हो गया। कौन सा गेम? विक्रांत ने कार्ड्स को हवा में घुमाते हुए कहा। बड़ों वाला गेम जो समझदार लड़के खेलते हैं, तुम भी तो बड़े हो रहे हो, है ना? जय को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो तुरंत पास आकर बैठ गया। विक्रांत की यही तो चाल थी, उसे ये महसूस करवाना कि वो खास है, कि वो अलग है, कि वो बड़ा हो रहा है। बच्चों को बिगाड़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है, उन्हें समय से पहले बड़ा महसूस करवाना। विक्रांत का मकसद साफ था। विक्रांत ने कार्ड्स मेज पर फैलाकर जय को करीब आने का इशारा किया। फिर वो धीमे धीमे उसे वो सारी बातें समझाने लगा जो एक छोटे बच्चे को कभी नहीं सिखाई जानी चाहिए। तरीके, लालच, हार जीत का चस्का, वो जय के दिमाग में एक एक करके ऐसी आदतें बिठा रहा था
जो बड़ा होकर उसे बर्बाद कर दें। विक्रांत की आंखों में दूसरा ही खेल चल रहा था। वो चाहता था कि जय बड़ा होकर बिल्कुल बर्बाद हो, एक बिगड़ा हुआ नौजवान जो गलत फैसले ले, गलत रास्ते चुने और गलत लोगों में फंसे। क्योंकि जय वही बच्चा था जिसके माता पिता की मौत उसने खुद करवाई थी। अब वो उस बच्चे का भविष्य भी खत्म करना चाहता था ताकि उनकी विरासत, उनके नाम और उनके शेयर पर उसका कब्जा हमेशा के लिए बना रहे। कुछ देर बाद विक्रांत ने कहा, देखा, तुम तो बहुत तेज हो, तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ा गेम है चैंप, एक दिन पूरा शहर तुम्हारा नाम लेगा। जय हंसकर बोल पड़ा, मैं जीत गया। विक्रांत ने ताली बजाई जैसे वो सच में खुश हो, लेकिन उसके अंदर एक ठंडी जीत महसूस हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी है।